میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ رتبے والی مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو بڑی عزت والا بنایا۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم چار چیزوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا مرکز خیال منبع خیال دل ہے، اور ایک ہمارے اندر نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کے مجموعے کو انسان بنایا ہے۔ جسم ہم دیکھتے ہیں، ہم ٹچ کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو، اس صورت کو بڑا خوبصورت، بڑا شاندار اور بڑا کامل بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ جسم کے بعد روح ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی نام ہی اس شے کا ہے کہ ہمارے بدن میں روح ہو۔ جب تک بدن میں روح ہے زندگی ہے، اور جب بدن سے روح نکل گئی تو موت ہے، جسے موت عادی اور حیات عادی کہتے ہیں۔ وہ اسی کا نام ہے کہ جسم میں روح ہے تو زندگی ہے، اور روح نکل گئی تو موت ہے۔ روح کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم میں میں نے اپنی ایک خاص روح پیدا کی، اس میں ڈال دی۔ آدم علیہ السلام میں ایک خاص روح ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ روح کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم جواب دو کہ روح میرے رب کا ایک خاص ہی معاملہ ہے، ایک خاص ہی امر ہے۔ تو جسم و روح کے ملاپ سے زندگی وجود میں آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، हमारा दिल अच्छे ख्यालात को कबूल करता है, उसका जो मरकज है वो दिल है। एक तो दिल वो होता है जो हमारे अंदर धड़कता है, जिसकी हार्ट बीट होती है, जो गोश्त का एक टुकड़ा है, एक ये दिल है। लेकिन इस दिल में एक और दिल है जो सोच का मरकज है, जो सोचता है, जो ख्याल करता है, जो समझता है, जो इल्हाम को कबूल करता है, जो खैर व शर में तमीज करता है। तो ये एक दिल है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दिल भी रखा। और इसके साथ एक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नफ्स रखा। नफ्स इसलिए रखा कि इंसान की पैदाइश का जो मकसद है कि उसके वजूद के अंदर एक मुकाबला जारी है खैर का और शर का। शर का जो मंबा है वो नफ्स है, और जो नेकी का मंबा है वो दिल है। दिल और नफ्स के दरमियान ये जंग जारी रहती। इन चारों की ताकत है, गिजा है, जोफ है, कमजोरी है, इनको इनकी गिजा चाहिए होती है। जिस्म की गिजा क्या है हम सब जानते हैं कि जिस्म की गिजा है कि उसे अच्छी खुराक दी जाए, अच्छा खाना दिया जाए, प्रोटीन उसको पूरे मिले, विटामिन्स उसको पूरे मिले, मिनरल्स उसको पूरे मिले, ये जिस्म की खुराक है। अब मामला ये है कि जिस्म भी हमारा है, रूह भी हमारी है, दिल भी हमारा है, नफ्स हमारा तो है लेकिन खुदा ने फरमाया तुम्हारा दुश्मन है। नफ्स है तो हमारे अंदर ही, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी फेवर में नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है। अब जिस्म हमारा है, रूह हमारी है, दिल हमारा है, लेकिन हमारा तर्ज अमल ये है कि हम जिस्म के साथ तो अपनों वाला सलूक करते हैं, जिस्म के साथ तो अपनों वाला सलूक करते हैं, और रूह के साथ बेगानों वाला सलूक करते हैं। हालांकि जिस्म भी हमारा है, रूह भी हमारी है। हम जिस्म के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। जॉब करनी है, बिजनेस करना है, खाना खिलाना है, बीमार पड़ जाए तो उसको जो है वो उसका इलाज करवाना है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, उसे सर्दी से बचाना है, उसे गर्मी से बचाना है, उसे अमराज से बचाना है, उसको सहूलत में रखना है, उसे आराम पहुंचाना है, उसकी राहत का ख्याल करना है। ये अपने जिस्म के लिए हम सब कुछ करते हैं और हम सारे ही करते हैं। लेकिन इसी जिस्म के अंदर जो हमारी अपनी रूह है उसके लिए आम तौर पे हम या कुछ नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो ये वो चीज है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस्म के साथ हमारा मामला अपनों वाला और रूह के साथ बेगानों वाला, हालांकि जिस्म भी हमारा, रूह भी हमारी। और मामला ये है कि जो तकाजे जिस्म के होते हैं उसी तरह के तकाजे रूह के होते हैं। जिस्म बीमार भी पड़ता है, ये तंदुरुस्त भी होता है। इसे गिजा भी चाहिए, इसे ताकत भी चाहिए, इसे आराम भी चाहिए, इसे राहत भी चाहिए, इसे सुकून भी चाहिए। यही मामला रूह का होता है। रूह को ताकत भी चाहिए, रूह को गिजा भी चाहिए, रूह को कुछ स्ट्रेंथ भी चाहिए। रूह बीमार भी पड़ जाती है, दिल बीमार भी पड़ता है। हमारा जिस्म बीमार होता है तो हमारी दौड़ लग जाती है, हम एक डॉक्टर छोड़ के दूसरे के पास, दूसरा छोड़ के तीसरे के पास जाते हैं, हम बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं, हम तमाम एहतियातें इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दो एहतियातें बताए तो हम तीन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भी जल्दी सही हो जाए। लेकिन अगर हमारी रूह बीमार हो जाए तो अव्वलन तो हम बीमारी का एहसास ही नहीं करते कि रूह बीमार है, और अगर थोड़ा बहुत कभी एहसास हो भी जाए कि हाँ भाई रूह को तो हम गिजा देते ही नहीं, रूह को तो ताकत पहुंचाते ही नहीं, उसकी गिजाइत तो नीचे जा रही है, इसमें तो बीमारियां लग गई हैं, इसको तो अमराज लगे हुए हैं, इसके साथ फुला बीमारी मुतालक है, फुला बीमारी मुतालक है, तो ना हमारा उसके इलाज की तरफ तवज्जो होती है, ना उसकी गिजा की तरफ तवज्जो होती है, ना उसकी सेहत की तरफ हमारी तवज्जो होती है। तो जिस्म की गिजा, जैसे ये अशिया है, जो फूड है, जो खाना है, जो चीज़ें हम खाते हैं, फल है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह और दिल के लिए भी गिजा बनाई है। दिल और रूह की गिजा क्या है? बहसियत मुसलमान हम बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं कि दिल और रूह की गिजा अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की मोहब्बत है, खुदा पे तवक्कुल है और खुदा की तरफ रुजू है, अल्लाह की बारगाह में झुकना है और उसके सामने खुशू इख्तियार करना है, उसकी बारगाह में आजजी करनी है और उसके हुक्म पे अमल करना है, आखिरत की तरफ मुतवज्जे रहना है, मुसीबत पे सब्र करना है, नेमत पे शुक्र करना है, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करनी है, आखिरत की मोहब्बत में इजाफा करना है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश करनी है, इबादात के साथ रूह को तकवीत देनी है, ताकत पहुंचानी है, ये वो चीजें हैं जो रूह की और कल्ब की, दिल की गिजा है। अच्छा, अब इसके आगे नफ्स का मामला है। नफ्स के बारे में हमें समझा दिया गया कि नफ्स तुम्हारे अंदर जरूर है, लेकिन ये बेसिकली तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे अंदर मुकाबले के लिए एक इंटरनल तुम्हारा दुश्मन है। इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दो दुश्मन बनाए हैं, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल शैतान है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन जानो। ये एक्सटर्नल दुश्मन है, और नफ्स ये इंटरनल है कि ये अंदर है और हमें बुराई का हुक्म देता है, हमें बुराई करने का कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, बेशक नफ्स बुराई का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है। तो नफ्स बुराई का हुक्म देता है और शैतान क्या करता है? शैतान भी बुराई का हुक्म देता है। शैतान बाहर से बुराई का हुक्म देता है, नफ्स अंदर से बुराई का हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए दो चीजें दुश्मन है, लिहाजा उनके साथ दुश्मनों वाला रवैया इख्तियार करो, क्योंकि खुदा ने उनको तुम्हारा दुश्मन बनाया और तुम्हें उनको अपना दुश्मन समझने का हुक्म दिया। अब ये जो हमारे अंदर नफ्स है, इसका भी मामला ये है कि ये भी ऐसे ही है कि ताकतवर भी होता है, कमजोर भी होता है, इसकी भी गिजा है। अब नफ्स की गिजा क्या है और नफ्स की ताकत क्या है और नफ्स की कमजोरी क्या है? नफ्स की जो गिजा है वो है ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, मन मर्जी, अपनी ख्वाहिश पे चलना, जो दिल किया वो करना, अपने नफ्स के तकाजों को पूरा करना, गुनाहों में पड़ना, ये सारी चीजें ये नफ्स की गिजा हैं कि जब नफ्स को ये चीजें दी जाती हैं तो नफ्स ताकतवर हो जाता है। जब ख्वाहिशात पे अमल किया जाता है तो नफ्स को ताकत मिलती है, जब गुनाह किया जाता है तो नफ्स को ताकत मिलती है। और इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी ये है कि इसकी गिजा बंद कर दे, नफ्स की खुराक बंद कर दे, इंसान को खाना आना दे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा। इसी तरह नफ्स का मामला है कि अगर नफ्स की खुराक बंद कर दी जाए, इसकी गिजा बंद कर दी जाए, इसे गुनाह की खुराक ना दी जाए, इसे ख्वाहिशात की खुराक ना दी जाए, इसे लज्जात की खुराक ना दी जाए, इसे शहवात की खुराक ना दी जाए, तो ये कमजोर से कमजोर तर होता जाता है। और होता यह है कि जिस्म और रूह या नफ्स और रूह, इन दोनों के तकाजे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिस्म कहता है मजे उड़ाओ। रूह कहती है कि नफ्स के मजे कम करो, जिस्म कहता है कि इस जिंदगी से भरपूर मजा उठाओ, रूह कहती है आखिरत की जिंदगी को सामने रखो। अब जिसने जिसके तकाजे पूरे किए वो उसी तरह का बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखे, बहुत ख्याल रखे, नींद पूरी, खुराक पूरी, विटामिन्स एक्स्ट्रा उसके लिए कैप्सूल और विटामिन्स की वो चीजें ले, सप्लीमेंट्स लेता है, उसके आराम का ख्याल करता है, जिम जाता है, मसल्स बनाता है, सारा कुछ करता है, नतीजा क्या होगा कि आदमी एक रेसलर बन जाएगा, एक बॉडी बिल्डर बन जाएगा, उसके बदन में ताकत होगी। जब वो जिस्म की सारी चीजें पूरे करेगा तो जिस्म जो है वो बॉडी बिल्डर बनेगा, वो स्ट्रांग बनेगा, वो पावरफुल बनेगा। लेकिन अगर इसके उलट कर दे कि जिस्म के तकाजे पीछे ले आए, उसकी खुराक थोड़ी सी कम करे, रूह की खुराक को बढ़ा दे, इसके तकाजे पीछे लेके आए, रूह के तकाजे ज्यादा पूरा करना शुरू कर दे, थोड़ा सा मुजाहदात के ऊपर डाले, थोड़ा सा रियाजतों में अपने नफ्स को डाले, थोड़ा सा इबादत के अंदर अपने आप को डाले, थोड़ा सा नमाजों की तरफ, तिलावत की तरफ, जिक्र की तरफ, दुरूद की तरफ, अल्लाह की बंदगी की तरफ, इबादत की तरफ, रातों के जागने की तरफ, तहज्जुद की तरफ, इशराको चाश की तरफ, अव्वामीन की तरफ, नमाज तौबा की तरफ, अगर अपने जिस्म को, अपनी रूह को इस तरफ डालना शुरू कर दे तो नतीजा ये होता है कि रूह ताकतवर होती जाती है। और रूह की ताकत की इंतहा क्या है कि अल्लाह ताला उसे विलायत का मर्तबा अता फरमा देता है। जो अपनी रूह के तकाजे पूरे करते हैं, रूह का ख्याल करते हैं, वो वली बन जाते हैं। अब ये जो राह विलायत है, ये राह विलायत बगैर मुजाहदे के नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो लोग जो हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, कोशिश करते हैं, फरमाया लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देते हैं। जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देते हैं कि ए बंदे, ये है रास्ता मेरी तरफ आने वाला, इस रास्ते पे चलते आओ तो तुम्हें खुदा की बारगाह तक रसाई मिल जाएगी, ये निशानात ये हैं, ये रास्ता ये है, इस पे चलते आओ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हमारी राह में मुजाहदा करता है, हम उसके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। ये नहीं फरमाया रास्ता खोल देते, रास्ता एक, रास्ते बहुत से, सबील एक रास्ता, सुबुल बहुत से रास्ते। फरमाया जो मुजाहदा करता है, हम उसके लिए बहुत से रास्ते खोल देते हैं। बहुत से क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक तो मरकजी रास्ता है, एक तो मरकजी रास्ता है, उससे जो हटके चलेगा वो तो हलाकत में गया, वो रास्ता है शरीयत का, शरीयत से हटके चलेगा तो हलाक होगा। लेकिन फिर इस एक रास्ते में जो आगे लेन है, एक बड़े रोड के ऊपर जो लेन्स बनी होती हैं, ये फास्ट ट्रैक है, ये मिडिल है, ये है, ये है, फिर जो अल्लाह ताला की तरफ जाने के रास्ते हैं वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे हैं। कोई बंदा खुदा तक पहुंचता है फराइज की अदायगी के जरिए, कोई बंदा खुदा तक पहुंचता है तिलावत कुरान के जरिए, कोई बंदा खुदा तक पहुंचता है जिक्र इलाही की कसरत के जरिए, कोई खुदा तक पहुंचता है नवाफिल की कसरत के जरिए, कोई आदमी खुदा तक पहुंचता है अपने माँ बाप की खिदमत करने के जरिए, कोई पहुंचता है लोगों की भलाई करने के जरिए, कोई पहुंचता है औलाद की अच्छी तरबियत के जरिए, कोई पहुंचता है दुरूद पाक पढ़ने के जरिए, कोई पहुंचता है अपने पड़ोसियों से हुस्न सुलूक करने के जरिए, कोई पहुंचता है गरीबों की मदद करने के जरिए, और कोई वो होता है कि जो इन सारे ही रास्तों से खुदा की बारगाह में पहुंचता है, जो सारा कुछ ही करने वाला है, उसे कहा जाता है कि ए बंदे, जिस रास्ते से चाहते हो उसी रास्ते से मेरी बारगाह में आ जाओ, जिस रास्ते से चाहते हो उसी रास्ते से मेरी बारगाह में आ जाओ। तो ये रास्ता है मुजाहदे का, और मुजाहदा रास्ता होता है कि जब नफ्स के तकाजों को पीछे करके दिल और रूह के तकाजों को पूरा किया जाए। अब ये चंद एक चीजें मैंने बयान की, अब उसके बाद नफ्स की बारी आती है। नफ्स के बारे में औलिया किराम ने, सूफिया उजाम ने बयान फरमाया कि नफ्स की पांच किस्में हैं। एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है, एक नफ्स मुतमईना है, एक नफ्स राविया है, और एक नफ्स मर्दीजा है। ये पांच किस्में हैं नफ्स की। नफ्स अम्मारा क्या है? अम्मारा का मतलब हुक्म देने वाला, ऑर्डर देने वाला। नफ्स अम्मारा वो है जो इंसान को गुनाह का हुक्म देता है, जो बुराई की तरफ रागिब करता है, जो गुनाह करने का कहता है, जो बुराई करने का कहता है। और अगर हम गौर करें तो शायद हमारी अक्सरियत वो है कि जिनके नफ्स में नफ्स अम्मारा की कैफियत ज्यादा पाई जाती है। नफ्स अम्मारा वो है जो बंदे को कहता है कि नमाज छोड़, नींद ना छोड़। नफ्स अम्मारा वो है जो बंदे से कहता है नमाज छोड़, कारोबार ना छोड़। जो कहता है नावल पढ़, कुरान ना पढ़। जो कहता है फजूल गोई कर, लेकिन जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी ना कर। जो कहता है गुनाह की जगह पे जा, लेकिन मस्जिद की तरफ ना जा। जो कहता है कि क्लब की तरफ तो जा, लेकिन अल्लाह के घर की तरफ ना जा। जो कहता है कि बुरे दोस्तों की तरफ चल, लेकिन अच्छे दोस्तों की तरफ ना जाना। जो कहता है कि रात के वक्त अपनी नमाज टीवी की नजर कर देना, फैमिली की नजर कर देना, गैदरिंग की नजर कर देना, क्लब की नजर कर देना, शराब की नजर कर देना, ये जो गुनाह का हुक्म देने वाला है ये नफ्से अम्मारा है। जो कहता है वो देख, जिसे देखने से खुदा ने मना किया। नफ्से अम्मारा वो है जो कहता है कि वो सुन, जिसके सुनने से खुदा ने मना किया। नफ्से अम्मारा वो है जो कहता है वो कर, जिसके करने से खुदा ने मना किया। नफ्से अम्मारा वो है जो कहता है कि वहां जा, जहां जाने से खुदा ने मना किया। तो ये बुराई का हुक्म देने वाला। अब हम अगर अपनी हालत और कैफियत पे गौर करें तो हम देख लें कि हमारी फज्र की नमाज में हम खुदा के हुक्म को तरजीह देते हैं या नफ्स के हुक्म को तरजीह देते हैं। उसी से पता चल जाएगा अगर नफ्स अम्मारा है या कोई दूसरा। अच्छा, नफ्स अम्मारा के बाद होता है नफ्स लवामा। नफ्स लवामा वो है जो इंसान को बुराई पर मलामत करता है, समझाता है। कोई इंसान से बुराई होती है या कोई उसकी जिंदगी में इंसिडेंट होता है, कुछ सानहा होता है, तो हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी की बात हमारे ऊपर असर करती है और हमारे दिल में एक फिक्र पैदा होती है कि हाँ यार हमें गुनाह छोड़ने चाहिए, हाँ यार मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, हाँ मुझे नमाजें पढ़नी चाहिए। हमारे दिल में एक एहसास पैदा होता है। या क्या होता है कि हमारे खानदान में हमारे अजीज अकारिब के अंदर कोई फौत हो गया, हमारा कोई दोस्त फौत हो गया, उसकी मौत पे हमारे दिल में एक ख्याल चलता है कि यार ये चला गया तूने भी जाना है, वो भी जवानी में चला गया तेरा कोई पता नहीं, आज तो उसका जनाजा पढ़ के आया तेरा भी जनाजा होना है, तूने उसको गुसल दिया तुझे भी गुसल दिया जाएगा, तूने उसके लिए कफन के लिए भाग दौड़ की तेरी भी कफन की भाग दौड़ हो रही होगी। यार तू मुसलमान है नमाज पढ़, तू मुसलमान है कुरान पढ़, तू मुसलमान है रोजा रख, तू मुसलमान है औलाद की इस्लाम वाली तरबियत कर, तू मुसलमान है पड़ोसी का ख्याल कर, तू मुसलमान है माँ बाप की खिदमत कर, कल्चर पे ना चल, तू मुसलमान है अच्छे काम कर। तो ये जो बाज़ औक़ात हमारे अंदर हमें कोई समझाने वाला एहसास पैदा होता है, ये नफ्से लवामा की अलामत होता है। जो बंदे को समझाता है, मुतनब्बे करता है, वार्न करता है, उसके दिल में एहसास पैदा करता है। और ये नफ्से लवामा का होना ये भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। बाज़ औक़ात ये नफ्से लवामा ही इंसान से ऐसा काम करवा देता है कि जो उसको सीधा जन्नत में ले जाता है। बंदा जो तौबा की तरफ माइल होता है तो तौबा की तरफ कैसे माइल होता है? नफ्से लवामा की वजह से। नफ्से लवामा उसको कहता है कि भाई तूने जिंदगी गुजार ली, जिंदगी गुनाहों में गुजारी, खुदा की नाफरमानी में गुजारी, क्या तुझे पता नहीं कि तुझे मरना है? क्या तुझे पता नहीं ये मौत के वक्त नेकों के पास फरिश्ते अच्छी सूरत में आते हैं और गुनाहगारों के पास फरिश्ते खौफनाक सूरत में आते हैं। क्या तुझे पता नहीं कि कब्र के अंदर सवाल होने हैं? क्या तुझे पता नहीं कि क्यामत के दिन अपने अमाल का जवाब देना है? क्या तुझे एहसास नहीं कि तुझे खुदा की बारगाह में खड़ा होना है? क्या तुझे एहसास नहीं कि तेरा नामा अमाल कहीं तेरे बाएं हाथ में देके जहन्नम में ना डाल दिया जाए? तो ये जो एहसास पैदा होता है, ये नफ्स लवामा पैदा कर रहा होता है। तो तौबा की तरफ जो मैलान होता है वो इस जरिए से होता है। और वही के बासुकात ये एहसास इंसान के अंदर ऐसी तड़प पैदा करता है और ऐसी उसके अंदर तड़प पैदा करता है और खुदा का ऐसा खौफ पैदा करता है कि यही उसकी नजात का जरिया बन जाता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु के जमाने का एक वाकया है। एक नौजवान लड़का था, मस्जिद में आने का बड़ा शौकीन था, नमाज पढ़ने आता था, बड़ी तवज्जो से खुशू से नमाज पढ़ता था, उसका बड़ा मामूल था। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु बड़ी उससे मोहब्बत फरमाते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि चंद दिन तक वो बंदा नहीं आया, वो लड़का नहीं आया। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बारे में पूछा 4-5 दिन के बाद कि भाई वो लड़का एक आता था मस्जिद में, आज नजर नहीं आ रहा। लोगों ने अर्ज की, हुजूर वो तो फौत हो गया। फरमाया, हैं फौत हो गया? मुझे तो पता ही नहीं। अर्ज की, जी हुजूर वो फौत हो गया। फरमाया, कहाँ उसका घर? चलो उसके घर चलते, जाके उसके वाले से ताजियत करते। उसके घर गए, जाके वाले से पूछा कि भाई आपका बेटा तो सेहतमंद था और वो ठीक था, उसकी तबीयत भी ऐसी कोई खराब नहीं थी, कोई मरज भी नहीं था, तो अचानक कैसे मौत आ गई? तो उसके बाप ने कहा कि हुजूर बस उसके साथ एक वाकया पेश आ गया और उस वाकये की वजह से वो फौत हो गया। पूछा, क्या हुआ? अर्ज की, हुआ ये कि एक दिन मेरा बेटा आपके पीछे इशा की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में उसको किसी औरत ने गुनाह की दावत दी, वो उसकी तरफ मायल हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसके घर गया और जब गुनाह के करीब पहुंचा, जब गुनाह के फेल के करीब पहुंचा, तो उसके दिल में फौरन ख्याल आया कि अर्श का मालिक मुझे देख रहा है, अर्श अजीम का रब मुझे देख रहा है। जब उसके दिल में यह ख्याल आया तो अल्लाह ताला की अजमत व हैबत उसके दिल पे ऐसे तारी हुई कि बेहोश होकर गिर गया। वो औरत घबरा गई कि भाई इसे क्या हुआ, इसे मैं किस काम के लिए लेके आई और ये तो बिल्कुल ही गया। उसे जैसे तैसे उठाया, घर से बाहर फेंका। उस नौजवान को होश आया थोड़ी देर के बाद, तो वो रोता हुआ अपने घर आ गया। अपने घर आके अब उसका नफ्स लवामा जो है वो चलना शुरू हुआ। उसने उसको बोलना शुरू किया, अब अपने आप को मुखातब करके कह रहा है कि ए बंदे, तू मस्जिद से निकला तो खुदा तुझे देख रहा था, तुझे उस औरत ने दावत दी तो खुदा तुझे देख रहा था, तो उसके साथ चल के उसके घर गया तो खुदा तुझे देख रहा था, तू गुनाह करने के लिए उसके करीब हुआ तो खुदा तुझे देख रहा था, तुझे शर्म नहीं आई कि अर्श का मालिक तुझे देख रहा था और तू उसके सामने उसकी इतनी बड़ी नाफरमानी करने लगा था? तो वो लड़का अपने घर में बार बार इसे सोचता रहा, सोचता रहा। अल्लाह ताला की अजमत का ऐसा उसके दिल पे गलबा हुआ कि उसका दिल फट गया और वो फौत हो गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब वाकया सुना कि हैं अल्लाह ताला के खौफ से और उसकी अजमत व हैबत से और अल्लाह ताला से हया करते हुए इस बंदे का इंतकाल हो गया, खुदा की बारगाह में खड़े होने के डर से इसका इंतकाल हो गया। फरमाया, चलो मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। उसकी कब्र पे गए, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उसकी कब्र पे खड़े हुए और इरशाद फरमाया कि ए नौजवान, मैंने तेरा वाकया सुना। कब्र को मुखातब करके फरमाया, मैंने तेरा वाकया सुना। और ए लड़के, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें। तो तू बता खुदा ने तेरे साथ क्या किया, तू बता खुदा ने तेरे साथ क्या किया। تو قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی، اے امیر المومنین، خدا سچا ہے، خدا سچا ہے، اس نے مجھے دو ہی جنتیں عطا فرمائی. یہ جو احساس ہے یہ نفس اللوامہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جو بندے کو ملامت کرتا ہے کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، تو کس کام میں پڑھنے جا رہا ہے، تجھے خدا کی بارگاہ میں کیا حاضر نہیں ہونا، تجھے خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، کیا تُنہیں خدا کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا، کیا تیرے رب نے تجھ سے پوچھنا نہیں کہ اے بندے تجھے پتا تھا کہ میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں بصیر ہوں، میں مشاہدہ کرنے والا ہوں، میں دلوں کی باتیں جاننے والا ہوں، دنیا دیکھے نہ دیکھے میں دیکھنے والا ہوں، کیا تُنہیں لوگوں کی حیا تو کی، میری حیا کیوں نہیں کی؟ تو ماں باپ کی حیا تو کرتا تھا کہ ان کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، لیکن تو میری حیا نہیں کرتا تھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے کرتا رہتا تھا. تو دوسروں کی باتیں ماننے میں تو بڑا تیز تھا، جہاں تجھے مہینے کے تھوڑے سے پاؤنڈ ملتے ہیں، تنخواہ ملتی، نوکری کے تمہیں سیلری ملتی ہے، ان کی بات ماننے کو تو دوڑا جا رہا ہے، وقت پہ اٹھتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، پراپر ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن میں خالق، تو نے وہ 500 پاؤنڈ، 700 پاؤنڈ کے اوپر تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس خالق نے تجھے پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں سے مالا مال کر دیا، آنکھوں میں روشنی اور نور ڈال دیا، کانوں میں قوت سماعت عطا فرمائی اور زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، جس نے تمہارے بدن میں روح ڈال کے تمہیں وجود بخشا، اس کی نعمتوں کا اور اس کی عطاؤں کا احساس ہی نہیں تھا. مہینے بعد کی سیلری ملنی تھی تو ڈیوٹی پکی، ٹائم کی پابندی، کوئی چھٹی نہیں ہے، اور ڈیوٹی پوری کریں گے اور ہر حکم پہ عمل کریں گے. تو جو میں نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا تھا، بغیر تیرے حق کے، بغیر تیرے استحقاق کے، بغیر تیری اوقات کے، بندے کا کیا حق تھا خدا پر کہ خدا اسے اتنی نعمتیں دے؟ یہ تو خدا نے اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمایا نا سارا کچھ. تو جس نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، وہی قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے بندے، تو نے دنیا والوں کے حکم پہ تو عمل کیا، جن سے تمہیں کچھ ملتا تھا، لیکن جس سے سارا کچھ ملتا تھا اس کے حکم پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ نفس اللوامہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فرمایا، اور وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور اپنے نفس کو خواہش، بری خواہش سے روک لیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور اس ڈر سے اپنے نفس کو بری خواہش سے روک دیا کہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، اپنے نفس کو روک لیا، تو فرمایا کہ پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ نفس اللوامہ ہوتا ہے، اور یہ بھی جس کو مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بڑا کرم ہوتا ہے. اور یہ جو نیک مجلسیں ہوتی ہیں، یہ اجتماع ہوتا ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کا نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم اجتماع میں آتے ہیں، ہم قافلے میں جاتے ہیں، ہم مسجد میں آنا جانا رکھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ہم صرف جو ہے نا بس ایک انسان ہی نہیں ہے، ساتھ میں مسلمان بھی ہیں. ہم صرف ایک باپ نہیں ہیں، ایک مسلمان باپ ہیں. ہم صرف بیٹے نہیں ہیں، ایک مسلمان بیٹے. لہذا اس کے ساتھ جو مسلمان کا لفظ جڑا ہوا ہے، اور جو مسلمان کا عظیم لفظ جڑا ہوا ہے، کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں. باپ ہونے کے تقاضے ہیں تو مسلمان باپ ہونے کے بھی تقاضے ہیں، بیٹا ہونے کے تقاضے ہیں تو مسلمان بیٹا ہونے کے بھی تقاضے ہیں، شوہر ہونے کے تقاضے ہیں تو مسلمان شوہر ہونے کے بھی تقاضے ہیں، بیوی ہونے کے تقاضے ہیں تو مسلمان بیوی ہونے کے بھی تقاضے ہیں، پڑوسی ہونے کے تقاضے ہیں تو مسلمان پڑوسی ہونے کے بھی تقاضے. تو لہذا ساتھ میں یہ جو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین جڑا ہوا ہے، یہ بھی ہمیں بہت سی چیزیں سمجھاتا ہے. تو نفس اللوامہ یہ نیک صحبت سے، نیک صحبت کی برکت سے، اجتماع کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ نفس ہمارا نفس اللوامہ میں بدل جاتا ہے. तीसरा है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना का मतलब है इत्मीनान वाला नफ्स, चैन वाला नफ्स, सुकून वाला नफ्स। ये कौन सा होता है? नफ्से मुतमइन्ना वो है कि जिसे अल्लाह की याद से सुकून मिलता है, अल्लाह की बंदगी और इबादत से जिसे राहत मिलती है, जिसे चैन मिलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, जिन्हें अल्लाह की याद में सुकून मिलता है, अल्लाह की याद में राहत मिलती है। हम जब बुजुर्गाने दीन के हालात पढ़ते हैं तो कितने हम ऐसे वाकयात सुनते हैं, पढ़ते हैं कि यार सारी रात इबादत करते थे, सारी रात तिलावत करते थे, एक एक रात में एक एक कुरान पढ़ दिया करते थे, रात में 500 नवाफिल पढ़ दिया करते थे, रमजानुल मुबारक के अंदर एक कुरान दिन में और एक कुरान पाक रात में पढ़ते थे, एक कुरान पाक तरावी में पढ़ते थे, हमारे लिए एक मुश्किल और वो 61 पढ़ते थे। तो ये क्या था? ये वो लोग थे जिनके नफ्स नफ्से मुतमइन्ना थे, जिनको इबादत में मजा आता था, जिन्हें तिलावत में मजा आता था, जिन्हें जिक्र से सुकून मिलता था, जिन्हें अल्लाह की बंदगी से चैन मिलता था। और औलिया किराम के अहवाल ऐसे इतने इतने के जिनका शुमार नहीं। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो इबादत के वाकयात हैं, सुभान अल्लाह, वो पढ़े तो आज तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी इबादत भी की जा सकती। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा खुद इरशाद फरमाया कि ए लोगो, मैं 25 साल तक इराक के वीरानों में फिरता रहा, इबादत करता, नफ्स कुशी करता, खुदा का जिक्र करता, तिलावत करता, नमाजें पढ़ता, नवाफिल पढ़ता। 25 साल तक इराक के वीरानों में, बयाबानों में, सहराओं के अंदर मैं फिरता रहा और खुदा की बंदगी करता रहा। और फिर फरमाया कि 12 साल ऐसे गुजरे कि मैं रोजाना रात को एक पांव पे खड़ा होके पूरा कुरान पढ़ा करता था। 12 साल एक पांव पे खड़ा होके पूरा कुरान पढ़ता था। और फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे छत की तरफ जा रहा था, तो मैंने जब सीढ़ी के दरमियान में पहुंचा, मैं 4-5 जीने जो है स्टेप मैंने जो है वो ऊपर गया, तो मेरे नफ्स ने मुझे कहा, ए अब्दुल कादिर, आज तो कुछ आराम कर ले, बरसों हो गए आराम किए हुए रात को, बरसों हो गए आराम किए हुए रात को, आज तो कुछ आराम कर ले। फरमाया कि जब मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि आज आराम कर, फरमाया कि मैं जिस जीने पे स्टेप पे खड़ा था वहीं पर एक पांव पे खड़ा होकर पूरा कुरान पढ़ रहा कि मेरा नफ्स मुझे किसी और तरफ बुला रहा है, जिक्र से, तिलावत से, इबादत से मुझे गाफिल करने जा रहा है। मैं जहां पर मुझे उसने वसवसा डाला वहीं पर खड़े होके मैंने पूरा कुरान मजीद पढ़ दिया। और फिर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि 40 साल ऐसे गुजरे हैं कि मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। तो ये जो इतनी इबादत किया करते थे, कैसे? हम जरा एक रात खड़े होकर देख लें, आधे घंटे बाद जो हमारी हालत और कैफियत होगी हमें पता है। बचा ये है कि हमें इबादत में मजा नहीं आता, हमें इबादत में मजा नहीं आता, वरना हम ही एक ही जगह पे बैठ के, हमने फेसबुक खोला होता है हमारी रात गुजर जाती है, हम फुटबॉल का मैच देख रहे होते हैं हमारी रात बड़ी आसानी से गुजर जाती है, हम और इस तरह के खेल तमाशों में लगे होते हैं, फिल्म देख रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारी रात गुजर जाती है, हम नेट सर्फिंग कर रहे हैं हमारी रात बड़ी आसानी से गुजर जाती है। वजह क्यों? थकावट नहीं होती। बंदा तो वही है जिसको एक घंटे की नमाज ने बेहाल कर दिया, एक घंटे की तरावे ने जिसकी टांगों में दर्द कर दी, जिसके अंदर से चीखों की आवाज आ रही है, वही बंदा फेसबुक खोल के बैठा है, इंटरनेट खोल के बैठा है, वो मैच खोल के बैठा हुआ है, वो टीवी खोल के बैठा हुआ है, वो फिल्में देख रहा है, उसको टेंशन ही कोई नहीं। रात ऐसे गुजरती है कि वो कहता है, या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई। क्यों? इसलिए कि इन चीजों में उसे मजा आता है। तो जैसे हमें इन चीजों में मजा आता है, औलिया किराम को अल्लाह की इबादत में वैसे मजा आता था। तो जब उनको मजा आता था तो उनके लिए फिर रातें जागना मुश्किल नहीं होता था। फिर वो कहते थे सारी रात इबादत करके सुबह को कहते थे या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाए, या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाए। क्यों? इसलिए कि इबादत के अंदर उनको सुरूर ऐसा मिलता था। उनकी हालत ये होती थी, हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का वाकया है कि आप रात को इबादत करती और जब सुबह का वक्त होता यानी सहरी से कुछ देर पहले का, तो थोड़ी देर के लिए लेट जाती, आराम करती, आराम करती, और उसके बाद फिर उठ के अपने आप से कहती कि ए नफ्स तू कितना सोएगा, ए नफ्स तू कितना सोएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तू सोएगा तो सुबह कयामत में उठेगा, जब कब्र में सोएगा तो फिर उठना नसीब नहीं होगा, फिर कयामत में उठे। और बुजुर्गान दीन का कहना यह था, वो कहते थे कि हमें सर्दियों की रातें और गर्मियों के दिन बड़े पसंद हैं, सर्दियों की रातें और गर्मियों के दिन बड़े पसंद हैं। क्यों? इसलिए कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो रोजा लंबा हो जाता है, रोजा लंबा होता है, ज्यादा देर भूखा रहते हैं, ज्यादा देर अल्लाह के लिए प्यासा रहते हैं, ज्यादा देर तक अल्लाह के लिए ख्वाहिशात से दूर रहते हैं, ज्यादा देर तक खुदा के नाम के ऊपर अपने आप को भूखा रखते हैं, ज्यादा देर तक अल्लाह की इबादत में रहते हैं। कि रोजादार जब तक रोजादार है तब तक वो खुदा की इबादत में है, रोजा इबादत। और सर्दियों की रातें इसलिए पसंद थी कि रातें लंबी होती हैं तो तिलावत करने का मौका ज्यादा मिलता है, टाइम ज्यादा मिलता है, नवाफिल पढ़ने का वक्त ज्यादा मिलता है, ज्यादा देर तक अल्लाह की बारगाह में क़याम कर सकते हैं, रुकू कर सकते हैं, सजदे कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। गर्मियों के दिन पसंद थे, सर्दियों की रातें पसंद, इसलिए कि इबादत ज्यादा। तो ये वो लोग थे कि जिनके नफ्स को अल्लाह की याद और अल्लाह की इबादत से चैन मिलता था। अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। और ये हकीकत है कि अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है, वरना आप जिस मुआशरे में यहां रहते हैं, यहां किस चीज की कमी है, यहां किस चीज की कमी है? पैसा भी मिल जाता है, सुकून भी मिल जाता है, नजरों के नजारे भी मिल जाते हैं, कानों को सुनने को बहुत कुछ मिल जाता है, घूमने फिरने की जगह बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है। लेकिन होता क्या है कि सब जिंदगी के बावजूद लोग कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ अंदर खाली खाली है, एक तादाद है यही कहती है कि यार कुछ ना कुछ अंदर खला रह जाता है, कुछ खालीपन महसूस होता है। पैसा भी है, औलाद भी है, कारोबार भी है, बिजनेस भी है, जॉब भी है, खाते भी अच्छे हैं, घर भी अपना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है ना जिंदगी में कुछ ऐसा खालीपन महसूस होता है कि समझ नहीं आता करें क्या। फिर कभी साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं कि यार कोई हमें तरीका बता दे खुश कैसे रहना है, कोई हमें तरीका बता दे कि दिल जो है ना फ्रेश कैसे रहे, मूड फ्रेश कैसे रहे। पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ बस होता रहता है। तो क्या है कि हमें अपने अंदर वो एहसास हमारे अंदर चलता है कि कुछ है कि जिसकी हमारे अंदर कमी है। खाने बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लिबास बहुत अच्छे मिल रहे हैं, घूमने फिरने की जगह भी हैं, लोग भी अच्छे अंदाज में मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। छुट्टी आती समझ नहीं आते करें क्या। तो वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अंदर जो दिल रखा है उस दिल की गिजा ही कुछ और है। हम कहते हैं कि जो जिस्म की गिजा है वो दिल की बन जाएगी, हम जिस्म को अच्छा लिबास पहनाएंगे तो दिल को लिबास मिल जाएगा, हम जिस्म को अच्छा खिलाएंगे तो दिल को ताकत मिल जाएगी, दिल भी मजबूत होगा, रूह भी मजबूत होगी। नहीं, मसला यह है कि हमारी रूह है जिसे लिबास चाहिए, हमारी रूह है जिसे गिजा चाहिए, हमारी रूह है जिसे ताकत चाहिए, हमारी रूह है जिसे खुराक चाहिए। हम अपने जिस्म की सारी कमियां पूरी करते रहते हैं, लेकिन चूंकि रूह की कमी पूरी नहीं करते, इसलिए हमें अंदर अपने आप एक खालीपन का एहसास होता है। एक आदमी के दो बेटे हों, एक बेटा भूखा है वो खाना दूसरे को खिलाता रहे, एक बेटा प्यासा है वो पानी दूसरे को पिलाता रहे, एक बेटा बीमार है दवाई दूसरे को खिलाता रहे, तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं सही हो सकता। अरे भाई जो बीमार है उसको खिलाओ, जो भूखा है उसको खिलाओ, जो प्यासा है उसको पिलाओ, जो बगैर लिबास के है उसको लिबास पहनाओ। हमारे साथ हमारा जिस्म है, हमारी रूह है, हमें जो खालीपन का एहसास होता है, जो हमें खुशियां थोड़ी सी रूठी रूठी नजर आती हैं, जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर किसी शय की कमी महसूस होती है, उन सारी चीजों का ताल्लुक होता हमारी रूह के साथ है, और हम तकाजे जिस्म के पूरे कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जिस्म की थोड़ी सी दौड़ लगा देंगे तो रूह खुश हो जाएगी, रूह ही खुश होगी, इसलिए कि खुदा ने रूह की गिजाई कुछ और बनाई, और वो गिजा वो है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया ये जो जो दिल हैं इन दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह की याद में मिलेगा, इन दिलों को चैन मिलेगा तो अल्लाह की याद में मिलेगा, अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह की बंदगी में मिलेगा, अल्लाह की इबादत में मिलेगा। तो नफ्से मुतमईना वो है कि जिसको अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिलता है, चैन मिलता है, ये तीसरा नफ्स था। चौथा नफ्स है नफ्से रादिया। रादिया का मतलब होता है राजी होने वाला, राजी होने वाला। नफ्से रादिया वो है जो खुदा से राजी हो गया, जो खुदा से राजी हो गया। एक बड़ा खूबसूरत हदीस के अंदर एक जुमला है, रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, पढ़ने का है ये, कि मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूं और मैं इस्लाम के दीन होने पर राजी हूं और मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के नबी और रसूल होने पर राजी हूं, खुदा के रब होने पे राजी हूं। तो ये अल्लाह ताला से राजी होना क्या है? अल्लाह से राजी होना ये है कि ए मौला तू जिस हाल में रखे मैं तुझसे राजी हूं। ये नहीं है कि तू मुझे खुशहाल रखे तो मैं राजी हूं और अगर माली मुआशी कमी आ गई तो फिर मैं राजी नहीं हूं। ए अल्लाह तू तंदुरुस्त रखे तो मैं राजी हूं, बीमार किया तो सॉरी फिर मैं राजी नहीं हूं। नहीं, ए अल्लाह जिस हाल में रखे मैं उसी हाल में राजी हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो अपने नबियों के वाकयात और अपने प्यारों के वाकयात बयान किए हैं उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज और हिकमत जो है वो यही है कि देखो ये अल्लाह से कैसे राजी रहे, इनको देखो ये अल्लाह से कैसे राजी रहे। आप वाकया जिस नबी का भी वाकया ले ले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है, कुफार ने कहा कि इनको आग में डाल दो, हमारे बुत तोड़ दिए इन्होंने, हमारे बुत तोड़ दिए, टॉलरेंस नहीं इनके अंदर, इनको आग में डालो, हर्रिकूहू जला दो इनको। सब ने जमा किया जलाने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजी, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आके कहते हैं कि ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, कोई हाजत है तो बताओ। अब किस वक्त कह रहे हैं कि जब तैयार बैठे कि अभी वो मशीन में डाला और उठा के सीधा आग में डालें, उस वक्त आगे पूछ रहे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कि ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा दोस्त मेरा मालिक जानता है, मेरा रब मुझे जानता है कि मैं किस हाल में। तो जब खुदा से राजी रहे तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि कुफार ने तो आपको आग में डाल दिया और खुदा ने फरमाया कुल ना या ना रुकूनी बर्दम वसलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी भी हो गई सलामती वाली भी हो गई। ये खुदा से राजी हुए कि ए अल्लाह जिस हाल में तूने रखा मैं राजी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो, तो क्या कहा? या अल्लाह मैं राजी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आगे से। तो ये नहीं कि या अल्लाह एक ही बेटा है बुढ़ापे में दिया है और अब कह रहे कि अपने हाथ से छुरी थे। ए अल्लाह अगर तू कहता है कि बेटे को ज़बह कर तो मैं तुझसे राजी हूं, अगर तू कहता है इसकी गर्दन पे छुरी चला तो मैं राजी हूं, अगर तू कहता है कि खुद इसको मार दे मैं राजी हूं, तू कहता है इसको लिटा जमीन पे जमा करने के लिए अल्लाह मैं राजी हूं। और आके इस्माइल से कहते हैं, 16-17 साल की उम्र है, पूछते हैं बेटा, इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंज़ुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे मैं ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरा क्या ख्याल है, बता तेरा क्या ख्याल है। अपना नहीं बताया, क्यों? इसलिए कि अपना तो पक्का ख्याल था कि खुदा ने ज़बह का फरमाया तो कर देना है, अपना ख्याल नहीं बताया कि मेरा क्या ख्याल है। पूछा बेटा फंदुर मादा तरा, तू बता तेरा क्या ख्याल है। उन्होंने अर्ज की या अबति फाल, ऐ मेरे बाप कर दे, कर दीजिए। इफाल मा तो उमर, जो आपको हुक्म दिया जाता है कर गुजरिए। सत्ता ची दुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बाप भी राजी है, बेटा भी राजी है। यह है नफ्से राजिया कि खुदा से राजी है। मौला तो ज़बा का फरमाता, बेटा ज़बा करने में राजी। और बेटा कहता है कि मौला तू अभी इसी 16 साल की उम्र में मुझे ज़बा करवाना चाहता है, जवानी पूरी देखी नहीं, उम्र आगे बढ़ी नहीं, जिंदगी के मजे लिए नहीं, और तू मेरी कुर्बानी चाहता है, ऐ अल्लाह मैं राजी हूं। सत्ता जी दुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे राजी रहने वाला ही पाओगे, सबर करने वाला ही पाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या किया कि जब बाप और बेटा दोनों राजी, तो अल्लाह तआला ने फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने अपनी गर्दनें झुका दी खुदा के हुक्म के सामने और इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया और ज़बा करने लगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है ना दई ना हू, तो फिर हमने निदा की। इब्राहिम तो तैयार हो गए छुरी चलाने के लिए, और बेटा छुरी चलवाने के लिए वो भी जमीन पे लेट गया। फरमाया व ना दई ना हू, तो हमने निदा की, ऐ या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम कद सद्दक्तर रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब आगे नहीं करने की जरूरत, छुरी ना फेर देना, पहले खुदा ही फरमा रहा है छुरी फेर, पहले खुदा ही हुक्म दे रहा है छुरी फेर बेटे के गले के ऊपर। और जब ये दोनों राजी बिल रिजा और राजी बिल कजा और राजी बे हुक्म खुदा, अल्लाह के हुक्म पे राजी होते हुए सब कुछ करने को तैयार है, तो रब फरमाता है ठहर जा, कद सद्दकतर रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, इतना ही बहुत है। अब हम जन्नत से दुम्बा भेजेंगे इसके लिए। वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, और हमने उसको उसके फिदिये के अंदर ज़िबह अज़ीम जन भेज दिया, जन्नत से दुम्बा भेज दिया। और फिर खुदा को यह अमल ऐसा पसंद आया कि इस उम्मत के अंदर क्यामत तक के लिए कुर्बानी करने को रख दिया। हर साल कुर्बानी करते रहो, इब्राहिम और इस्माइल को याद करते रहो। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इब्राहिम का तज़किरा पिछलों में रख दिया, पिछली उम्मतों में रख दिया। जो उम्मत आएगी वो कहेगी इब्राहिम हमारे। तो ये अल्लाह की रिजा पे राजी रहना, इसे कह ये है नफ्से राजिया कि अल्लाह का जो हुक्म है उस पे राजी है, और खुदा का जो फैसला उस पे राजी है, और खुदा जिस हाल में रखे उस पे राजी है। हजरत इस्माइल अलैहि सलामी का दूसरा वाकया कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि भी अपने बच्चे को, 6 महीने का बच्चा, और अपनी बीवी को जाओ मक्के के बियाबान में छोड़ के आ जाओ, चले गए बयाबान में, मक्के के बयाबान में, ना परिंदा ना इंसान ना जानवर ना पानी ना खाना ना दरख्त ना खेती, कुछ भी नहीं। इतना सा खाना दिया, एक जब मशकीजे में पानी दिया, और ये मक्के के बयाबान में छोड़ दिया। छोड़ के जाने लगे तो हजरत हाजिरा ने कहा ये क्या, ये वीराने के अंदर, ये बयाबान के अंदर, ये सहरा के अंदर, ये पहाड़ों के दरमियान अकेले ही छोड़ के जा रहे हो, 6 महीने का बच्चा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश। फिर हजरत हाजरा ने पूछा ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? आप फिर खामोश। तीसरी मरतबा हजरत हाजरा ने पूछा कि क्या अल्लाह का हुक्म है? तो तीसरी मरतबा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, ये मेरे मौला का हुक्म है। تو حضرت حاجرہ نے جواب پتہ کیا دیا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہے، حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے خدا کے حکم پہ راضی ہونا، خدا کے حکم پہ راضی ہونا۔ جنگل میں، بیابان میں، تنہا، ایک خاتون، رات کے وقت پہاڑوں میں کبھی جائیں تو طبیعت صاف ہو جائے انسان کی، پہاڑوں پہ جیسے ہال تاری ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، پہاڑوں کے درمیان جا کے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر ٹھیک ہے، خدا کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، پھر خدا کا ہی کام ہے، خدا ضائع نہیں کرے۔ لیکن دن گزرا، دو دن گزرے، کوئی کرشمہ ظاہر نہیں ہوا، کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں، پانی ختم، کھانا ختم، اب کیا کرے؟ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں دوڑ رہی ہے، ماں دوڑ رہی ہے، وہ اتنا سا بچہ، وہ بھی خدا سے راضی ہے، اس کی ماں وہ بھی خدا سے راضی ہے، وہ جو باپ چھوڑ کے چلا گیا وہ بھی خدا سے راضی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلہ عطا فرمایا کہ جو بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے قدموں سے وہ پانی جاری کیا جو آج تک جاری ہے، جو آج تک جاری ہے، جسے مشینوں سے نکالا گیا، جسے ڈول سے نکالا گیا، جسے مشینوں سے نکالا گیا، جسے بڑی بڑی مشینیں لگا کے نکالا گیا اور نکالا جا رہا ہے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہو رہا، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ دنیا میں کہیں بھی ذرا اتنی مشینیں لگا کے پانی نکالے، پانی ختم ہو جائے گا، وہاں دوبارہ مزید اور بورنگ کرنی پڑے گی اور گہرائی میں جانا پڑے گا۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے وہ صلہ عطا فرمایا کہ اگر تم ہم سے راضی ہو پھر ہم بھی تم سے راضی ہیں۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا کہ ان کے قدموں کا صدقہ اور قدموں کے پاس نکلنے والے چشمے کا پانی آج بھی آب زمزم کے نام سے برکت کے لیے پیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے۔ کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا عرب، کیا عجم، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا UK، کیا یورپ، ہر جگہ بھر بھر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کا ایسا صدقہ اور وسیلہ جاری کیا کہ آج تک وہ پانی جاری ہے۔ اور جو ماں خدا کے حکم پہ راضی رہی تھی، اس ماں کے اس دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند کیا کہ فرمایا اب قیامت تک جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، پانی کے بھلے چشمے لگے ہوئے، نل لگے ہوئے، ہر طرف ٹیبز ہیں، ہر طرف کولر رکھے ہوئے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی دوڑ لگاؤ، پھر بھی دوڑ لگاؤ۔ یا اللہ پانی تو بہت ہے، نہیں تب بھی دوڑ لگاؤ۔ یا اللہ کولر موجود ہے، یا پھر بھی دوڑ لگاؤ۔ مشینیں چل رہی ہیں، پھر بھی دوڑ لگاؤ۔ اے سی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دوڑ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نے کیا تھا کہ جو خدا کے حکم پہ راضی رہی تھی، تو اس کی یاد آج تک باقی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ کہ یہاں پر اللہ کی ایک ولیہ دوڑی تھی، ان کے قدم لگے تھے، اور ان کے قدم لگنے خدا کو اتنے پسند ہیں، فرمایا کہ جہاں اس کے قدم لگے تھے وہ خدا کی نشانیاں بن گیا، اور خدا کی نشانیاں وہ ہوتی ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اسے اللہ تعالیٰ دلوں کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کی رضا پہ راضی رہنے کا، یہ نفس راضیہ ہے۔ اور نفس مردیہ کیا ہے؟ نفس مردیہ یہ ہے، نفس مردیہ کا مطلب ہے کہ جس سے خدا راضی ہے۔ نفس راضیہ یہ کہ بندہ خدا سے راضی ہے، اور نفس مردیہ یہ ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے تو پھر خدا بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ خدا کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، راتیں جاگتا ہے، دن کے روزے رکھتا ہے، رات کی عبادتیں کرتا ہے، مسجد بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، جماعت نہیں جانے دیتا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کا بھلا کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ جب بندہ دوڑ دوڑ کے خدا کے حکموں پہ عمل کرتا ہے اور وہ ہر حال میں خدا سے راضی رہتا ہے، اس کا عزیز چلا گیا وہ پھر بھی خدا سے راضی ہے، اس کا کاروبار چلا گیا وہ پھر بھی خدا سے راضی ہے، اس کا نقصان ہو گیا وہ پھر بھی خدا سے راضی ہے، وہ بیمار پڑ گیا وہ بیماری میں بھی خدا سے راضی ہے، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا وہ پھر بھی خدا سے راضی ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب خدا فرماتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے تو بتا تیری رضا کیا ہے، اور پھر خدا بندے کو وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے. حدیث مبارک میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود ہیں، گرد پڑا ہوا، لوگوں میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مدفوع بالابواب، کسی دروازے پہ جائیں تو لوگ بولے سوری یار پلیز آج ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جاؤ تم چلے جاؤ. فرمایا لیکن خدا کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ ہے اگر قسم کھا لیں تو خدا قسم کو پوری کر دیتا ہے، اگر کہہ دیں کہ آج بارش ہوگی تو بارش ہی ہوتی ہے، اور اگر کہہ دیں کہ بیٹھے رہو بارش نہیں ہوگی تو پھر بارش نہیں ہوتی. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے مجمع جمع ہوا بادل چھا گئے اور کہ یا اللہ میں جمع کرتا ہوں تو بکھیرتا ہے منتشر کر رہے، اتنے سارے لوگ جمع کیے بارش کر کے لوگوں کو منتشر کر رہے، بارش رک گئی، جب تک بیان چلتا رہا بارش نہیں ہوئی، تقریر ختم ہوئی غصے پا کی بارش شروع ہوگی. اور کتنے اور اس طرح کے اولیاء کرام کی بات. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس مردیہ ہے کہ جن سے پھر خدا راضی ہوتا ہے، یہ وہ ہے کہ پھر جن کی موت کے وقت خدا ان سے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ جسے خدا کے ذکر سے اطمینان ملتا تھا، جسے نمازوں سے سکون ملتا تھا، جسے مسجد میں مزہ آتا تھا، جسے مسجد میں چین ملتا تھا، ساری زندگی بڑی مشقتیں کر لی، اب لوٹ اپنے رب کی طرف، زندگی گزار لی، مشقتیں اٹھا لی، روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، ذکر کر لیے، تلاوتیں کر لی، نیکی کی دعوت دی، بہت کچھ کیا، خدا کی رضا کے لیے بہت کام کیے، ارجعی الی ربی کی، اب لوٹ اپنے رب کی طرف. کس حال میں؟ راضیت مرضیہ، اس حال میں لوٹ کہ تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھائی تھی تو اب آرام کا جو گھر میں نے بنایا ہے، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ ہے نفس مردیہ. تو نفس امارہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہ کا حکم دے، گناہ کی طرف لے کے جائے. نفس لوامہ ہو کہ جو اس کو سمجھائے، اور پھر نفس مطمئنہ ہو جسے خدا کی یاد میں مزہ آئے، جسے مسجد میں سکون ملے، جسے تلاوت میں سکون ملے. پھر نفس راضیہ ہو کہ جو اللہ کے ہر حکم پہ راضی رہے، خدا جس حال میں رکھے اس حال پہ راضی رہے، اور پھر وہ مرتبہ پائے پھر خدا اس سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، ہمارے دل کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے نفس کو لوامہ، مطمئنہ، راضیہ اور مردیہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.